सुनो सुनो ब्रह्मा बाबा की मंगलकारी दिव्य कहानी दिव्य कहानी। सुनो सुनो
जिसको सुनकर ज्ञानी भी जिसको सुनकर ज्ञानी भी बन जाता ज्ञानी।
सुनो 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 ब्रह्मा बाबा की मंगलकारी दिव्य कहानी दिव्य कहानी।
ओम शांति। जब इस यज्ञ की स्थापना हुई तो मेरे शरीर का जन्म हुआ, मैं 90 साल की हूँ। और जब पाकिस्तान हिंदुस्तान बना तो बाबा सब स्टीमर्स में आए और हम लोग एरोप्लेन से आए थे पाकिस्तान से हिंदुस्तान में। और बाबा ने भी नारायण की भक्ति की, हमने भी नारायण की भक्ति की, लक्ष्मी नारायण की भक्ति की। हमारी हिस्ट्री मिलती जुलती है। वैसे भी हम मुल्तान के रहने वाले हैं और कराची और मुल्तान का 3 घंटे का रास्ता था। आसी पड़ोसी हैं हम और भाषा भी बहुत मिलती जुलती है हमारी, सिंध की और मुल्तानी भाषा मिलती जुलती है। और जब यज्ञ में हम सब पाकिस्तान से सब कुछ लेके आए थे, पैसा जेवर सब लेके आए थे, लेकिन हिंदुस्तान में बहुत बड़ा बिजनेस किया उसमें, मतलब जो हमारे साथ पार्टनर थे ना तो वो बेईमान हो गए, तो उसके बाद हमारा बेकरी पार्ट हो गया। जैसे यज्ञ में बेकरी पार्ट हुआ, जिसने देना था वो उसने नहीं दिया, वैसे हमारा भी बेकरी पार्ट था। मतलब हम बाहर घर में रहते थे और ये यज्ञ की बात है, तो हमारी हिस्ट्री बहुत मिलती जुलती है। और जब सेवा शुरू हुई तो मेरा अलौकिक जन्म हुआ। तो 1953 में मैं ज्ञान में चली हूँ। और उसके बाद जब सबसे पहले कानपुर में मम्मा आई हमारे पास में, तो जो कानपुर वाले बाबूजी माता जी थे जिनके घर में सेंटर था, तो यहाँ मधुबन में आए तो उन्होंने मम्मा की मुरली सुनी तो बाबा को बोले, बाबा आपने ऐसी चीज को छिपा के रखा हुआ है, ऐसी चीज तो दुनिया के आगे रखनी चाहिए। तो बाबा ने कहा, माँ तो आपकी, आप ले जा सकते हैं। तो सबसे पहले मम्मा हमारे पास आई। तो उस समय हम थोड़ा समय ज्ञान में चलते थे, तो जैसे मैंने मम्मा को देखा और मुझे ऐसा अनुभव हुआ मम्मा से कि बस मुझे अभी रियल माँ मिल गई है, और वो माँ मेरे को फीकी लगने लगी और ये मुझे रियल माँ मिल गई। तो जैसे मम्मा ने मेरे को अपने पास में बिठा करके बहुत प्यार से मेरे से बात किया, मैं तो बहुत गदगद हो गई। फिर उसके बाद हम मतलब ज्ञान में चलने लगे। तो जब मैं यहाँ आती थी ना तो मुझे बहुत शांति मिलती थी। तो जब शांति मिलती थी मैं दूसरों को भी जाकर सुनाती थी, आप वहाँ जाओ बहुत अच्छा है, वहाँ शांति मिलेगी। तो वो कहते थे कि नहीं, अरे तुम कहाँ चली गई हो, अरे वो तो मिसलिज्म कर लेते हैं, वो जादू कर लेते हैं, वो अपने प्रेम में फंसा लेंगी, तुम अभी छोटी बच्ची हो, अभी तुमको कुछ पता नहीं है, तो अभी तुम वहां नहीं जाना बिल्कुल भी। तो मुझे ऐसे रोकते थे। तो मैं कहती थी, भगवान मुझे तो किसी पर विश्वास नहीं है, ना दुनिया वाले पर विश्वास है, ना ब्रह्मा कुमार पर विश्वास है, मुझे तो सिर्फ भगवान आप पर विश्वास है। अगर तो सही रास्ता है तो मुझे इस रास्ते से कभी हटाना नहीं, अगर गलत रास्ता है मेरी बुद्धि में ऐसी प्रेरणा देना जो मैं यहाँ से निकल जाऊँ, भगवान तुझे कहूंगी तूने मुझे गड्ढे को डाला है, मुझे रास्ते का नहीं मालूम, रास्ता दिखाने वाले आपको। तो जैसे मैंने भगवान को बोला ना तो ऐसे ही मुझे आवाज आती है कि तुझे जो कुछ मिलना है तुझे यहाँ मिलना है। दुनिया में कितना भी भटक लेगी ना लेकिन तेरे को कुछ प्राप्ति होने वाली नहीं है। और वो दिन आए दिन है, दुनिया कहती मुझे पागल, मैं कहती दुनिया वाले पागल, दुनिया वाले सोचते पहन किसके चक्कर में आ गई, मैं कहती दुनिया वाले पागल है, देखो भगवान आए उसको पहचानती नहीं है, पागल नहीं है तो क्या है। तो ऐसे मैं मतलब उनको बोलती थी। फिर उसके बाद तो मेरे को कितनी भी मेरे साथ परीक्षा आई लेकिन मैं घबराई नहीं, मैं डरी नहीं और मैं चलती रही। और इतने तक कि मेरी एक माँ बन करके पुलिस में रिपोर्ट भी करके आई, मेरी माँ नहीं थी तो ठीक, लेकिन दूसरी माँ बन करके पुलिस में रिपोर्ट करके, वो एंटी पार्टी थी तो पुलिस आने वाली थी, मैं स्कूल से सीधे सेंटर पर आती थी। पहले सेंटर पर आई तो मेरे को गुप्ता जी, बनारस वाले गुप्ता जी है ना, तो मेरे को मिले तो कहते तुम अभी घर में चले जाओ, तो यहाँ पुलिस आने वाली है, उनको प्रूफ नहीं मिलना चाहिए। तो मैंने को जैसा बोला वैसे मैं चली गई घर में। फिर पुलिस आई, देखकर चली गई, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो बाबा की इतनी शक्ति थी कोई कुछ कर नहीं सकता था। इतने तक कि हम जहाँ से हम आते थे ना, तो वो मतलब पौन घंटा आने में पौन घंटा जाने में लगता था। और दो लड़कों के कॉलेज थे, एक एग्रीकल्चर कॉलेज था और दूसरा एसजे कॉलेज जहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज था। तो वहाँ पर तो कोई भी आंख उठा के नहीं देखता था हमको। तो एक मैं रात को सोती थी, बस मुझे ऐसा लगता था सवेरा हो मैं सेंटर पर पहुंचूं। 3 बजे उठ करके चल पड़ती थी, 4 बजे योग होता था वहाँ, तो 3 बजे उठ के चल पड़ती थी और मैं चली आती थी। कंपनी बाग था, जाकि जंगल था, रात को तो जंगल दिखाई पड़ता है ना, तो कोई भी उसमें कोई नहीं था, जानवर भी थे वहाँ पर, लेकिन मैं बाबा की याद में चली आती थी। तो एक बार एक लड़का मेरे को मिला, कहता बहन जी आप कहाँ जाती हो? तो मैंने कहा हम सत्संग में जाते हैं। कहते हैं आप अकेले नहीं जाया करो, आजकल समय ठीक नहीं है। मैंने उसको बड़ी फलक से जवाब दिया, जिसका साथी है भगवान उसको क्या रोके गांधी और तूफान, उसको कोई रोकने वाला पैदा ही नहीं हुआ। ऐसे में उसको वो अपने रास्ते चला गया, मैं अपने रास्ते चल गया। तो देखो बाबा कितना, बाबा की याद में चलने में कितना फायदा है, आप सुनते जाना आगे चल करके। फिर यहाँ पर हम आते थे ना, तो कोई कोर्स नहीं था उस समय, 7 दिन का कोर्स भी नहीं था, कुछ नहीं था, बस बहनों के दृष्टि में भी इतनी पावर थी, बस दृष्टि लेते ही जैसे हम इस दुनिया से भी ऊपर हो जाते थे और दुनिया भी भूल जाती थी, अपने शरीर की भी सुध-बुध भूल जाती थी। तो ऐसे करते करते तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद ना मेरे को भोग लगाना था एक बार, मतलब मेरे को बोला आज तुम्हारा टर्न है भोग का है। तो मेरे पास थोड़ा पैसा था कमाई का, अपनी मेहनत की कमाई का पैसा था, तो मैं खुद ही खरीद के भी लाई, खुद ही बनाया मैंने, मेरे को बाबा को भोग लगाना, भगवान को भोग लगाना, तो मुझे कितनी खुशी थी उस समय। तो जैसे मैंने वो बनाया ना, तो वो संदेशी अपने घर से आई और भोग का टाइम हो चुका था और वो भोग में बैठ गई। तो फिर उसके बाद जब उसने संदेशी ने संदेश सुनाया, तो बाबा ने संदेश दिया कि बच्ची मैं कलब का भूखा हूँ, भले मुझे भक्ति में खिलाते हैं लेकिन मैं खाता नहीं हूँ, मैं उनकी भावना पूरी करता हूँ, ऐसा पवित्र भोजन मुझे आज मिला है। ऐसे बाबा ने देश बन गया, क्योंकि जितना हमने प्यार से स्नेह से बाबा को दिल से लगाया ना, और मेहनत की कमाई का पैसा था मेरा, इधर उधर का पैसा नहीं था, पैसा भी मेहनत का था। तो इसी तरह से बाबा ने भी उसी तरह से हमको देश मान लिया। फिर उसके बाद ना, तो जैसे अच्छा लगता था, मेरे लौकिक माँ बाप को लोगों ने भड़काना शुरू कर दिया, अरे तुम्हारी लड़की वहाँ जाती तुम्हारे हाथ में नहीं आएगी, वो तो घर बार छोड़ के चली जाएगी, तुम शादी नहीं करेगी, तुम उसको रोको, अभी उसको जाने नहीं दो। तो वो मेरे को रोकते थे, बहुत रोकते थे, तुम नहीं जाओ। तो मैं कहती थी कि आप वहाँ चल के देखो, मैं कहती चलो किसी बहाने से आए तो सही। मैंने कहा देखो बाबू जी माता जी है जिनके घर में सेंटर है, तो उनको कुछ मिला है तब तो उन्होंने बहनों को रखा हुआ ना, आज देखो किसी के पास 4 दिन मेहमान आ सकता था चला जाए तो अच्छा है, कि इतने दिन नहीं रख सकते, तो इतने दिनों से बहनों को रखा हुआ है, कुछ उनको प्राप्ति हुई है तब तो रखा हुआ है ना, ऐसे कोई रख सकता है? तो आप चल के देखो, किसी की सुनी सुनाई बात तो मैं नहीं चलो, आप खुद चल करके देखो। कहते नहीं नहीं हम तो भाई पूछ पकड़ के चले जाएंगे। मैं कह पूछ पकड़ने वाली बात नहीं है, यहाँ तो खुद प्रैक्टिकल करना है, देखो भगवान को पहचानो। तो फिर उसके बाद ना मैंने सेंटर पर, हाँ फिर बीच में थोड़ा सुनाती हूँ आपको, भूल गई मैं। तो जब मैं यहाँ आती थी ना, तो उसके बाद मेरे के साथ एक बहन थी, माता थी, वो मेरे को ज्ञान में लेके आई। तो जब ज्ञान में लेके आई ना, तो उस समय माता जी बाऊ जी बहने सब बॉम्बे गए हुए थे, बाबा का ऑपरेशन हुआ था तो सभी वहाँ गए हुए थे। तो फिर मैं वापस आ गई, फिर दोबारा जब गई ना, तो सब बहने माता जी बाऊ जी सब आ गए थे। तो फिर बाबा ने सब क्लास वालों के लिए बॉम्बे का एप्पल भेजा था, सबको हमारी याद में एप्पल देना। तो सबसे पहले बाबा का फल हमको मिला एप्पल, बाबा का दिया हुआ। और जैसे मैंने बाबा को फोटो में भी, सपने में तो पहले देखा था, लेकिन फोटो जैसे मैंने देखी ना, तो बस मुझे फोटो देखते ही मुझे ऐसा अनुभव हुआ जैसे बूढ़े ब्राह्मण के वेश में भगवान आ गया। क्योंकि सत्यनारायण की कथा में है ना, है कि बूढ़े ब्राह्मण के वेश में उस ब्राह्मण से पूछा, तुम्हारी शेर से पूछा तुम्हारी नाव में क्या है, उसने कहा लत्ता पत्र, लत्ता पत्र, उसने पहचाना नहीं। फिर जब उसने पहचाना तो दंडवत किया उसने। तो सत्यनारायण की कथा मैं रोज करती थी, जब तक पूजा नहीं कर लूं तब तक मैं पानी नहीं पीना, क्या शाम को 5 लीटर न बढ़ जाए। मैंने भक्ति की बहुत मैं अटल थी, है ना, क्योंकि इसलिए बाबा ने मेरा भक्ति का बर्तन पहले साफ कर दिया, क्योंकि बुद्धि रूपी बर्तन है ना, तो इसको तो पहले साफ कर दिया, तभी ज्ञान ठहरेगा। जब तक बर्तन साफ नहीं होगा ना तो दूध ठहरेगा ही नहीं, फट जाएगा है। तो बाबा का भी जो इतना पवित्र ज्ञान है ना, वो भी हमारी बुद्धि जितनी स्वच्छ होती जाएगी ना, उतना हमारा बुद्धि में ज्ञान भरता जाएगा, धारण होता जाएगा। इसी तरह से बाबा ने पहले तो मेरा बर्तन साफ कर दिया, बाबा ने मेरे बंधन काटे, बाबा ने मुझे मधुबन में लाया, मधुबन में बाबा ने लाया, बंधन भी बाबा ने काटा। मैं बहुत बंदेली थी, माँ बाप बहुत बंधन डालते थे, लेकिन मेरे को जरा सा भी संकल्प नहीं होता था कि मैं आज क्लास में नहीं जाऊंगी, और मेरे को रोकते थे बहुत। और जो गेट बंद रहता था ना वो खुल जाता था, और जो खुला होता था वो बंद कर देते थे, तो मैं निकल आती थी। निश्चय था ना मुझे जाना ही है, कुछ भी हो जाए बाबा के पास, बाबा की मुरली सुननी है जरूर, तो मैं आ जाती थी, तो कोई मेरे को रोक नहीं सकता था। फिर मेरे माँ बाप ने इतना बंधन किया कि तुमको अभी जो है ना जाना नहीं है बिल्कुल भी। तो मैं कहती थी मुझे मधुबन जाना है, तो मधुबन जाने की मुझे छुट्टी नहीं दे रहे थे, और बहनें भी मेरे को नहीं लाती थी, कहती थी ये चली जाएगी तो सभी कहेंगे देखो लड़की को भगा के ले गए, क्योंकि उस समय तो ये वातावरण फैला हुआ था ना कि लोग लड़कियों को भगा के ले जाते हैं। तो फिर वो भी मेरे को नहीं आने देती थी, और मैं बाबा को बोलती थी बाबा अब मेरे को अपने पास बुलाओ ना, क्यों नहीं बुलाती मेरे को उड़ा के ले चलो बस यहाँ से, मुझे इतना लगता था। फिर मेरे को ना मेरे को छुट्टी नहीं देते थे, फिर मैंने अपनी माँ बाप को बोला मेरे को छुट्टी दे दो, मेरे को थोड़ा पैसा दे दो, मैं जाऊँ मधुबन में होके आऊँ। कहते नहीं, तो मैंने कहा ठीक है एक बात आपकी मानेंगे एक बात हमारी मानो आप, ठीक है आप मुझे छुट्टी दे दो, पैसा नहीं दो, चलो पैसा नहीं दो लेकिन मुझे छुट्टी तो दे दो। फिर उन्होंने कहा इसके बाद पैसा होगा नहीं तो जाएगी कैसे की, तो मेरे को छुट्टी उन्होंने दे दिया। तो जब छुट्टी दे दिया तो मैंने पैसा कर्जा ले लिया, कर्जा लेकर के मधुबन में आई पहली बार। एक मास रही, तो एक मास में बाबा ने मुझे अच्छा भर्तु कर दिया कि बाबा के साथ घूमने जाते थे हम नक्की लेक में, बाबा की उंगली पकड़ करके, कभी मम्मा की उंगली पकड़ करके, फिर बाबा बीच में खड़ा हो जाता था, कोई न कोई पान सुनाता था, तो ऐसे करते करते ना तो हमको बहुत अच्छा लगता था। बस मेरे को नशा रहता था, हम कभी भी बाबा के कमरे में चले जाए, मम्मा के कमरे में जाए, कोई रोक ठोक नहीं, कोई रोकते ही नहीं था, चाहे 2 बजे भी बाबा के पास चले जाओ रात को, कुछ नहीं बाबा के पास जाने। तो हम लोग तो सब पहले बाबा के पास जाते थे ना, और बाबा भी इतना खुश होता था, और बाबा ने मुझे आते वरदान भी दे दिया, बच्ची तुम तो घर की हो। जैसे मैं बाबा से पहली बार मिली ना तो बाबा ने मुझे वरदान दे दिया, बच्ची तुम तो घर की हो, तो मुझे अपना घर का बना लिया बाबा ने। कितनी भी परीक्षा आई, बहुत परीक्षा आई हमारे सामने, तो माँ बाप की परीक्षा आई, दुनिया की परीक्षा आई, बहनों की परीक्षा आई, सब प्रकार की परीक्षा से पार करते करते हम बाबा के बन गए। तो एक साल तक मैं बंधन में थी, और मैं रात को बैठ कर तपस्या करती थी, बस बाबा कहता था, बाबा की मुरली सुन के जाती थी, बाबा कहता था योगी और भोगी इकट्ठे नहीं रह सकते, हंस और बगली इकट्ठे नहीं रह सकते। तो मैं कहती थी बाबा जब तूने मुझे अपना बना लिया है फिर इस घर में क्यों रखा है मुझे, क्यों नहीं अपने पास बुलाती हो। तो ऐसे मैं बाबा को बोलती रात रात बैठ करके मैं याद करती थी बाबा को, और मेरे को नींद नहीं आती थी, सारा घर का काम करना, स्कूल में जाना, मैं सिलाई सीखती थी, 2 साल का मैंने सिलाई का कोर्स किया और सिलाई सीखती थी, और फिर सेंटर में भी आती थी दोनों टाइम, तो भी मुझे थकावट नहीं होती थी, और बस रात को बैठ कर तपस्या करती थी। तो ऐसे भी बहनें भी मेरे को नहीं रखती थी, घर से छुट्टी नहीं मिलती थी, और मैं जैसे मछली की तरह तड़पती हूँ, जैसे मछली पानी की मैं तड़पती है ना, ऐसे मैं भगवान के पीछे तड़पती थी कि बाबा अभी मेरे को जल्दी बुला लो। तो फिर बाबा ने मेरे को सचमुच में ऐसी बात बनी जो बाबा ने मुझे अपने पास ही बुला लिया। तो फिर बहनों को मैंने बोला तो कहते तुम माँ बाप की चिट्ठी लिखवा के लिया हम तुमको रख लेंगे। तो मेरा बाप कहता था तुमको शादी करनी है, मैंने कहा मैं शादी नहीं करूंगी, अभी जब हम अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊंगी तब शादी करूंगी। तो मेरे से भी जवान जवान लड़कियां बैठी हैं, मैं इतनी जवान थोड़ी हूँ अभी मैं 17 साल की थी उस समय। तो फिर उन्होंने कहा नहीं तुम लड़कियां बोलती थोड़ी है, लड़कियों के माँ बाप शादी कर देते हैं। मैंने कहा ठीक है आप मेरी शादी कर दो, लेकिन मैंने उस लड़के के साथ फेरे नहीं डलवाऊंगी, उस समय उठ जाऊंगी, आप जानो आपका काम जाने। अब मेरे को ये बुद्धि कौन देता था, मैं मेरी शादी कर दो ठीक है, लेकिन मैंने उस लड़के के साथ फेरे नहीं डलवाऊंगी, मैं उस समय उठ जाऊंगी। फिर वो डर जाते थे। अभी देखो बाबा ने मेरी बुद्धि में डाला, मुझे थोड़ी अक्कल थी, ये बाबा मेरी बुद्धि को टच करता था, ऐसे ऐसे बोलो बाबा ने मेरे को बताया। तो फिर मेरे को फिर उन्होंने कहा ठीक है अभी चाहे तुम ब्रह्मा कुमारी बन जाओ चाहे शादी कर लो, हम तुमको घर में नहीं रखेंगे। मैंने कहा ठीक है अगर आप नहीं रख सकते ना, हमारा ज्ञान ये नहीं कहता है कि घर बार छोड़ के चले आओ, लेकिन अगर आप नहीं रख सकते हैं तो आप हमको लिख के दीजिए और जो हम कहेंगे वो आपको लिखना पड़ेगा और खुशी खुशी से छुट्टी देना, आपको नाराजगी से नहीं जाना है, हमारा ज्ञान ये नहीं कहता है, खुशी खुशी से छुट्टी दोगे तब मैं जाऊंगी, ऐसे नहीं जाऊंगी मैं है? तो नहीं तो हम घर में बैठे हैं अपने। तो वो क्या समझते थे अभी ये रुकने वाली तो है नहीं। फिर मैं बहनों से पूछ के गई थी, मैंने कहा क्या क्या लिखवाना मेरे को, फिर उन्होंने मेरे को बताया ये लिखवाना अपने बाप से माँ बाप से, फिर उन्होंने मेरे को लिख के दिया। तो मैंने कहा देखो इसमें आपकी भी इज्जत है, नहीं तो कहेंगे इनकी लड़की इनके कंट्रोल में नहीं है, कंट्रोल से बाहर है, दुनिया वाले का मुंह तो पकड़ जाए पकड़ नहीं सकते हम, तो हमारे पास चिट्ठी होगी हम प्रूफ तो दिखा सकते ना, देखो हमारी माँ बाप ने खुशी से छुट्टी दी है, आप क्यों नाराज होती हो, नहीं है? तो इस तरह से मैंने कहा कि देखो इसमें आपका भी कल्याण है हमारा भी कल्याण है, आज देखो लड़कियां गलत रास्ते पे जाती है उनको कोई रोक नहीं सकता, आज हम अच्छे रास्ते जाते हैं आप उनको रोकते हो क्यों, हम अच्छे रास्ते, आपको खुशी होनी चाहिए कि हमारी लड़की बहुत अच्छे जगह जा रही है, आप कल के देखो भगवान आया है, भगवान से कुछ प्राप्त करो कुछ अनुभव करो, तो ऐसे में उनको बोलती थी। लेकिन वो जो सुनी सुनाई बातें है ना, जो गलत सुनी सुनाई बातें उनकी बुद्धि से निकलती नहीं थी, अगर किसी की बुद्धि में गलत बात बैठ जाए ना निकलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अच्छी बात ठहर ही नहीं सकती, अब एक गिलास में चाहे दूध डालो चाहे पानी डालो चाहे जहर डालो कुछ भी डालो ठहरेगा तो उतना जितना बड़ा गिलास है, तुम्हारी बुद्धि जितनी बड़ी है उसी अनुसार ही तो बैठेगा ना, तो चाहे तो उस ज्ञान डाल दो है हमारी बुद्धि में, और चाहे दुनिया की बातें डालो चाहे उल्टी बातें डालो चाहे सुलटी बातें डालो, मतलब भरेगा तो उतना ही ना जितना हमारा बर्तन है। तो ऐसे करते करते फिर मेरे को माँ बाप ने लिख के दे दिया, फिर जैसे फिर मैं बाबा को बोलती थी बाबा ये अपने मुख से कहे तुम यहाँ से चले जाओ तब मैं चलूंगी, फिर मेरी माँ ने एकदम मेरे को बोला कि तुम चली जाओ यहाँ से, मैं तो तैयार बैठी थी अंदर सब अपनी अटैची तैयार करके बैठी हुई थी, फिर मेरी माँ ने जैसे ही कहा ना तो मैं सेंटर पर चलने लगी, फिर मेरी माँ रोने लगी, मैंने कहा रोती क्यों हो, लड़की तो वैसे ही पराई घर की होती है, हैं रोती क्यों हो, तो आपको खुशी होनी चाहिए लड़की अच्छी जगह जा रही है, हैं तो बाकी हमारा ज्ञान ये नहीं कहता हम आपके से मिलेंगे नहीं जुलेंगे नहीं, जब आप मेरे को बुलाएंगे तो मैं आऊंगी, ऐसे नहीं मैं नहीं आऊंगी आपसे मिलूंगी आऊंगी, हम तो यही है ना इसी शहर में है, दूसरे शहर में तो है नहीं मैं, है? तो जब भी आप मेरे को बुलाओगे मैं आऊंगी, हमारा ज्ञान है, तो ऐसे उनको थोड़ा सा दिलासा दे करके तो हम सेंटर पर चले आए, फिर तो हम सेंटर में रहने लगे और हम सिविल एंड सेंटर में कानपुर में थे उस समय, तो सिविल एंड सेंटर में गए बहनों के पास में, फिर जितने भी ये युगल थे ना वहाँ 15-16 युगल थे और कानपुर उस समय फर्स्ट नंबर था, तो युगलों का जो था ना वो बाबा को सरेंडर कराना था, ये पहले की बात है, सरेंडर होने के पहले की बात है हमारी, तो उनको सरेंडर करना था, तो बाबा ने तो संदेशी के द्वारा संदेश दिया, गुरु सतगुरुवार के भोग लेके गई ना, तो बाबा ने संदेश दिया कि जितने भी युगल है ना तो सब जो है वो बाबा ने नाम दिए, एक एक नाम दिया, तो उनका नाम जो है वो उन्होंने बोला तो सबको वहाँ रहना है, रात को सिर्फ घर में सोने जाना, खाना पीना रहना सब दिन भर वहीं रहना है, सिर्फ रात को सोने के लिए अपने घर जाना है, क्योंकि सेंटर इतना बड़ा था भी नहीं और उस समय हम घर में रहते थे, अभी मैं सरेंडर नहीं हुई हूँ। तो फिर उसके बाद ना मेरा नाम नहीं था उसमें, तो मैंने कहा बाबा ने मेरा नाम क्यों नहीं दिया, फिर मैंने कहा बहनों का भी तो नाम नहीं है, मैंने भी तो सरेंडर है, तो इसलिए मेरा नाम नहीं, बाबा ने मेरे को कहा बच्ची तुम घर की हो इसलिए बाबा ने मेरा नाम नहीं दिया, फिर मैंने कहा बाबा वो तो वहाँ सेंटर पर रहती है मैं तो अपने घर में रहती हूँ, मैं कैसे ये पार्ट देखूँ, मुझे ये पार्ट जरूर देखना है, मैं बाबा को जैसे बात कर रही हूँ ना, जैसे आपसे बात करे वैसे बाबा से बात करेगी, तो बाबा मैं ये पार्ट कैसे देखूँ, मुझे ये पार्ट जरूर देखना, चाहे मुझे बर्तन मांगने पड़े चाहे झाड़ू लगाना पड़े जो भी सेवा होगी मैं करूंगी, लेकिन मुझे ये पार्ट जरूर देखना है। तो गंगे दादी को जो है ना वो भोजन बनाने वाला कोई नहीं मिल रहा था, और बाबा ने ये भी बोला था कि जो भोजन बनाने वाला भी हो ना वो भी योग युक्त हो, तो बाबा ने बोला कि जो भोजन भी बनाए ना वो भी योग युक्त हो, योगी आत्मा बनाए साधारण आत्मा नहीं। और मेरा तो बाबा से पहले से योग था, क्योंकि मैं बाबा से बात ही कर रही थी कि बाबा मुझे ये पाठ जरूर देखना है। तो फिर गंगे दादी को ना कोई खाना बनाने वाला नहीं मिल रहा था, तो मुझे खाना बनाने के लिए बुलाया। उस पाठ में बहुत ही विचित्र पाठ चले, क्योंकि कोई भी अगर कोई भी उल्टा संकल्प करके आता ना, दूसरा भी कोई जो जिनके नाम थे वो उनके अलावा जो दूसरा कोई आता था, कोई भी अगर व्यर्थ संकल्प लेके आए, कोई उसके संशय हो कुछ भी हो, तो बाबा चला जाता था और कमला आ जाती थी। जिनके तन में बाबा का पाठ चल रहा था ना, तो कमला आ जाती थी, और बनारस वाले गुप्ता जी है ना, उनकी युगल थी, तो वो आ जाती थी और बाबा चला जाता था। फिर सब समझ जाते थे कुछ है, फिर उस व्यक्ति को उठा देते थे। जैसे ही वो चला जाता था, फिर बाबा का पाठ शुरू हो जाता था। ऐसे एक बंदेली माता भी आई थी, तो वो भी पूर्ण पवित्र नहीं थी, तो बाबा चला गया और फिर उसको भी उठा दिया। फिर उसके बाद फिर बाबा का वही पाठ चला, और अंत में भी अभी ये सब चलने वाला है। ये जो शुरू में बाबा ने दिखाया ना, ये सब अंत में भी चलने वाला। अभी बाबा इशारे तो दे रहा है ना, है कि देखो जो अभी 3 मास का भी जो नहीं करेंगे तो बाबा आने नहीं देगा। बाबा ने इशारा दे दिया है, अभी ये सब अंत में प्रत्यक्ष होगा ना, इसलिए बहुत सावधान से चलना भाई साहब अभी। ठीक है ना, बाबा की जो बातें है ना, उसको सर माथे रखना है, उसको अपने अंदर धारण करना है। फिर उसके बाद ना हम बैठे रहते थे, बाबा सब पाठ हम देखते थे, जो भी बाबा का पाठ चलता देखती रहती थी मैं। तो फिर उसके बाद जल्दी जल्दी मैं खाना बना करके आके बैठ जाती थी। तो फिर उसके बाद 5 दिन का प्रोग्राम था ये, और 5 दिन के बाद जब वो जिनके तन में बाबा आता था कमला है, तो वो बहुत रोने लगी। जैसे अभी तो 5 दिन तो बाबा के साथ साथ रही ना, अभी जैसे बाबा से बिछड़ रही है, है? तो उसको रोना आ रहा था, और मुझे बहुत खुशी हो रही थी। मुझे खुशी इसलिए हो रही थी, बाबा मेरे साथ साथ है, मुझे साकार बाबा दिखाई पड़ता था। हालांकि बाबा साकार मधुबन में था और मैं कानपुर में थी, तो मुझे साकार बाबा दिखाई पड़ता था। जैसे मैं बाबा के साथ साथ हूँ, खा रही हूँ, पी रही हूँ, सो रही हूँ, जाग रही हूँ, एक पल भी एक सेकंड भी बाबा से मैं अलग नहीं हूँ। ऐसे 2 मास में भी अवस्था रही, और मुझे इतनी खुशी रहती थी, मुझे खाने की भी भूख नहीं लगती थी। अब ये भी मुझे बाबा ने भक्ति का फल दिया, जो मैं बाबा के साथ साथ रही ना, तो बाबा ने मुझे ये भक्ति का फल दिया। क्योंकि जब मैं भक्ति करती थी नारायण की, तो मुझे किसी ने बोला कि आप 25 पूर्णमासी रखोगे ना तो आपको पति अच्छा मिलेगा। क्योंकि अज्ञान काल में तो ये है ना कि पति मिले तो अच्छा मिले, है? क्योंकि जीवन तो उसके साथ बिताना है, दूसरे के साथ तो नहीं बिताना। तो मैं कहते पति मिले तो अच्छा मिले, ऐसा वैसा पति नहीं हमको चाहिए। तो मैंने 25 पूर्णमासी रखना शुरू कर दिया। अगर 24 भी रख ली ना, एक नहीं रखी, फिर से 25 रखनी पड़ेगी, मतलब 25 पूरी करनी है, लिंक नहीं टूटना चाहिए उसमें। तो मेरी 25 से भी ऊपर हो गई, तो मुझे बाबा पतियों का पति मिल गया। तो देखो मैं बाबा के साथ साथ हूँ, खा रही हूँ, पी रही हूँ, चल रही हूँ, सो रही हूँ, है? मेरे को इतनी खुशी, इतनी जैसे मेरे जमीन में पाँव भी नहीं है, जमीन से ऊपर है पाँव, और मुझे भूख भी नहीं लगती थी। तो ये मेरे को बाबा ने भक्ति का फल दिया। कैसे पतियों का पति बाबा है ना, बाबा कैसे साजन हूँ मैं, है? तो बाबा ने अनुभव कराया साजन कैसे हूँ। तो सब बाबा ने अनुभव कराया हमको, सब प्रकार के अनुभव कराए, साकार रूप में भी सब संबंधों से अनुभव कराया। वैसे मैं बहुत खुशी में रहती थी। तो फिर उसके बाद ना हमको बहुत अच्छा लगता था। फिर उसके बाद बाल भवन खुला बच्चों का, क्योंकि इनको सब कुछ सरेंडर करके फिर बाल भवन खुला। बाल भवन मतलब बच्चों को वहाँ रखा, और जितनी भी माताएं बहने थी ना, है? तो फिर वो मतलब सेंटर पे सेवा केंद्र में गई। तो जैसे संत राम जी यहाँ रहते हैं ना, उनकी युगल थी, ऐसे बहुत 7-8 थे। एक निर्मला है जयपुर में, वो भी उसी उनकी बच्ची भी थी पूनम, वो भी बाल भवन में रहती थी उस समय। तो ऐसे मतलब 25 जने हम लोग रहते थे वहाँ पर, बाकी आना जाना तो बहुत रहता था। तो फिर जब वहाँ मम्मा आई, तो मम्मा ने मतलब क्लास कराया, तो हमको रात हमारा भोजन बनाने का मतलब टर्न था, मतलब भोजन बनाती थी मैं सबका। और बाबा मामा आते थे तो सभी चारों तरफ से बहुत लोग आ जाते थे, सब इतने लोगों का खाना बनाना। तो मुझे रात को ही प्रोग्राम मिल जाता था, ये तुमको बनाना है, और रात को ही दाल चावल वगैरह सब साफ सुफ करके रख देते थे। सब्जी 3 बजे उठ करके हम सब्जी भी काट के रख देते थे। फिर जब क्लास होता था क्लास करते थे, तो जब मामा का क्लास करने जाती थी, तो मामा एक ही दृष्टि में सबको ऐसे देखती थी, और जैसे हम इस दुनिया से भी पार हो गए, अपने शरीर से भी पार हो गए, ना इस दुनिया की शुद्ध बुद्ध है ना अपने शरीर की शुद्ध बुद्ध है। तो जब क्लास पूरा हुआ तो हम किचन में जाके खड़े हो जाते हैं, मुझे कोई बात याद नहीं है क्या बनाना है, प्रोग्राम मिला हुआ पहले से ही लेकिन कोई बात याद नहीं है। तो फिर एक एक बात मेरे को याद आती जा रही है तो मैं करती जा रही हूँ, जैसे मैं ऊपर से उतर करके मैं काम कर रही हूँ, ऊपर से उतर कर काम, मैं इस दुनिया में नहीं हूँ लेकिन ऊपर से आकर के जैसे मैं कर्म कर रही हूँ, तो जो जो बात मेरे को याद आती जाती है ना वो मैं करती जाती हूँ। क्योंकि इतने लोगों का खाना बनाना ना तो वो तो करण कराम हमारे बाबा है ना, जैसे भी करवाए हमको तो हमारे द्वारा जैसे भी बाबा कराता था वैसे मैं करती जाती थी। तो ऐसे ही हमको मतलब मम्मा की भी दृष्टि में बहुत पावर थी, मम्मा दृष्टि देती थी और जैसे हम इस दुनिया से पार हो जाते थे ना। फिर उसके बाद ना तो हम लोग मम्मा की गोदी में जाते थे सभी तो एक बार एक बैचलर था तो वो भी मम्मा की गोदी में जाने लगा तो मम्मा को तो दूर से वाइब्रेशन आ जाते थे तो मम्मा ने पूछा कि तुम्हारा हिसाब किताब क्या है, तुम पहले कब से चलते हो, सारा हिसाब किताब दो। तो सबने बोला मम्मा ये तो बैचलर है, तो मम्मा ने बोला कि जरूरी थोड़ी कि बैचलर सब पवित्र होते हैं, पहले अपना हिसाब किताब दो। उसकी हिम्मत नहीं हुई मम्मा की गोदी में जाने की, सुना ना, इतना पवित्र मम्मा की गोदी है, कोई कम थोड़ी है, साधारण थोड़ी है, माँ है, जगत माँ है, साधारण तो नहीं है। तो इसलिए उसकी हिम्मत नहीं हुई मम्मा की गोदी में जाने की। तो अभी ये सब प्रैक्टिकल अभी आने वाला समय जो है ना वो सब बाबा जो ऐसे ऐसे जिसका बुद्धि योग बाबा के साथ होगा ना वही यहाँ रह पाएगा, यहाँ आ जाएगा, लेकिन जिसका बुद्धि योग बाहर होगा ना वो बाहर से निकल जाएगा, यहाँ नहीं ठहर पाएगा, वो धरनी जो है ना उसको टिकरे नहीं देगी। और जो योग युक्त बच्चे होंगे ना कहाँ कहाँ से भाग भाग करके भी यहाँ आएंगे। बाबा ने फॉरन वाला कोई बोला था एक बार कि देखो ऐसा समय आएगा तो जो प्लेन जिसमें आप लोग बैठे होंगे ना वही प्लेन उड़ेगा, दूसरा उड़ेगा ही नहीं। तो जिनका बुद्धि योग बाबा के साथ हो ना, तो हमारा है सारा बुद्धि का मालार, जितना जितना हम बुद्धि योग अभी बाबा के साथ क्लियर रखेंगे ना तो उतना ही हमको अंत में बहुत हमको प्रेरणा मिलेगी, टचिंग भी होगी, सब कुछ होगा, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। नहीं तो हम भी उस दुनिया में जैसे दुनिया वाले हैं हम भी उस दुनिया में चले जाएंगे। इसलिए बहुत सावधानी से चलना है, बहुत ही खबरदारी से, बहुत ही धारणा में चलना है, नहीं तो समय आने पर तो हमारा भी वही हाल होगा जो दुनिया का हाल होगा, ठीक है ना। इसलिए बहुत बाबा को याद करना है जितना प्यार से, क्योंकि बाबा की याद में इतनी शक्ति है कोई कुछ कर नहीं सकता। एक बार मुझे स्वप्न आया, स्वप्न में सुनाती हूँ मैं आपको, मुझे सपने भी बड़े अच्छे अच्छे आए, तो दो तीन मेरे को सपने अच्छे अच्छे आए। एक बार तो पहले पहले मुझे स्वप्न आया कि एक मंदिर में जाकर के मैं बाबा का परिचय देती जा रही हूँ, देती जा रही हूँ, सुनाती जा रही सुनाती, मैंने तो कभी सुनाया भी नहीं किसी को, सुनाती जा रही सुनाती जा रही, बाबा का परिचय खूब देती जा रही खूब, और वो लोग भी गदगद हो रहे हैं, मैं भी गदगद हो रही हूँ, सुनते सुनते ना वो भी गदगद हो रहे हैं, खुशी खुश हो रही है और मैं भी खुश हो रही हूँ। तो जब मैंने बाबा का परिचय पूरा किया तो सब मेरे पाँव पड़ने लगे, तो मैंने कहा मेरे पाँव नहीं पड़ो, मेरे को देने वाला कौन उसको याद करो, मेरे को देने वाला कौन उसको याद करो, मेरे पाँव नहीं पड़ो, मेरे को देने वाला कौन उसको याद करो, ऐसे में बोल रही हूँ, तो सब खुश हो रहे हैं। फिर दूसरा मेरे को सपना आया जब दिल्ली पहला मेला हुआ था 1973 में, तो उसके बाद मेरी तबीयत वहाँ मेरे को टोली की ड्यूटी थी, तो फिर मैं वहाँ टोली संभालती थी, तो फिर मेरी तबीयत खराब हो गई काफी, मतलब बुखार वगैरह भी था, तो बुखार हो गए तो हमको आना था, दो दिन बाद आना था। तो फिर हमने ना मेरे को बाबा ने सपना दिखाया, सपने में क्या देखती हूँ कि बहुत एक पतली सी तार है, उस तार के ऊपर मैं चल रही हूँ और सामने बाबा खड़ा हुआ, जैसे ये पीछे बाबा खड़ा है ना, ऐसे ऐसे हाथ करके बाबा खड़ा हुआ है। तो जैसे मैं बीच में आती हूँ तो देखती हूँ बहुत गहरा खड्डा है, इधर देखती हूँ बहुत गहरा खड्डा है, तो मैं कहती जरा सा मेरा पाँव फिसले मैं खड्डे में जाके गिरूँ, तो बहुत गहरा था खाई जैसे। तो फिर बाबा सामने खड़ा, बाबा कहते बच्ची ना इधर देख ना उधर देख, मेरे को देख मंजिल तक पहुंच जाएगी, बच्ची ना इधर देख ना उधर देख, मेरे को देख मंजिल तक पहुंच जाएगी। तो इतने में मधुबन पहुंच जाती हूँ, मधुबन पहुंचती हूँ तो सभी बोलते हैं देखा तुम्हारा क्या हाल हुआ है, तुम्हारी चटनी हो गई, तुम्हारा क्या हाल हुआ। मैंने कहा किसी को नहीं देखो, बाबा को देखो। तो जिसको मैं बोलती जा रही हूँ ना तो फिस्टा होता जा रहा है, और ऐसी दीदी मेरे सामने आई, दीदी कहती है बच्ची तुमको फूला कुछ चाहिए? मैंने कहा दीदी मेरे को कुछ नहीं चाहिए, बस बाबा को देखो समय बहुत थोड़ा है, बाबा को देखो समय बहुत थोड़ा है, ऐसे बाबा दीदी को भी बोल दिया और दीदी भी फरिश्ता बन गई, सारे फरिश्ते बन के बड़ा अच्छा सीन लग रहा था। तो ये बाबा ने मुझे क्यों दिखाया, मेरा पेपर आने वाला था तो इसलिए बाबा कहते इधर उधर नहीं देखो, मेरे को देखो, पेपर से पास हो जाओगे, पार हो जाओगे। और जैसे फिर मैं ट्रेन में आई ना, तो ट्रेन में भी मैं मतलब दादियों के साथ ही आई, मैं दादियां निर्वैर भाई सब साथ में एक ही ट्रेन में आए थे वापस। तो फिर दीदी के मैं फर्स्ट क्लास डिब्बे में गई, मैंने दीदी को सपना सुनाया, मैंने कहा दीदी मेरे को अच्छा सा सपना आया। दीदी का अच्छा तो सपना तो तेरे को बड़ा अच्छा आया। तो फिर दीदी ने कहा अच्छा तुम यहाँ खाना खा लो हमारे साथ। तो दीदी ने बहुत प्यार से हमको वहाँ खाना खिलाया, क्योंकि इतने समय मैं खाना भी नहीं खाया था, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं दीदी के साथ खाना खाया। फिर मैं ट्रेन में लेटू, मेरे सामने बार बार वही सपना है, बार बार मेरा वही सपना है, मेरा सपना वो मेरे से हटे ही नहीं, बार बार मेरे सामने वो सपना है। और जैसे मैं मधुबन पहुंचती हूँ और मेरा पेपर शुरू हो जाता है, पेपर शुरू हो जाता है मेरा। और फिर मेरे जैसे पेपर शुरू हो जाता है, फिर मेरे को बाबा वही सपना दिखाता है, बच्ची किसी को नहीं देखना मेरे को देखना, बच्ची किसी को नहीं देखना मेरे को देखना, मंजिल तक पहुंच जाओगी, ऐसे बाबा मेरे को बार बार बोल रहा है। तो अभी भी कुछ बात मेरे सामने आती है ना, बस मेरे को सामने वही सीन आ जाता है, जैसे बाबा मेरे को कह रहा है बच्ची किसी को नहीं देखो मेरे को देखो। तो तीसरा सपना मेरे को आया कि अब घर चलना चाहिए, तो अब घर जाएंगे कैसे, जब तक हिसाब किताब है तब तक जा नहीं सकते, अब हिसाब किताब चुक चुक करने के लिए हमको तपस्या करनी पड़ेगी, अभी तपस्या के लिए हमको एकांत स्थान चाहिए, अब एकांत में यहाँ मेरे को कोई बैठने नहीं देगा इतनी देर। तो फिर सामने ऊंची पहाड़ी है ना, इस गेट के सामने ऊंची पहाड़ी है, उस पहाड़ी पर मैं बैठ जाती हूँ, ना किसी मुझे व्यक्ति की, ना वैभव की, ना वस्तु की, कुछ नहीं, बस मैं और मेरा बाबा, तीसरा कोई संकल्प भी नहीं, ऐसे मैं पहाड़ी पे बैठ के तपस्या कर रही हूँ। और इतने में ना एक शेर आता है, और वो शेर नीचे की पहाड़ी में डर जाता है, वो मेरे को देख रहा है, मैं उसको देख रही हूँ, मुझे डर नहीं लग रहा उसे, वो मेरे को देख रहा है। तो थोड़ी देर के बाद ना एक भाई मेरे को ढूंढ रहा है, देखा सामने सफेद वस्त्र कोई बैठी है, शायद यही होगी, तो उस तरफ आ रहा है। तो वैसे जब मेरे को कोई संकल्प नहीं था पहले, तो जैसे वो आ रहा था ना, तो उस समय मेरे मन में संकल्प चल रहा है, इसके मन में कुछ प्रसन्नता सा चल रहा है, और शेर नीचे उतरता है, उसको खा जाता है, फिर भी उसी पहाड़ी पे आकर बैठ जाता है, फिर भी मुझे डर नहीं लग रहा। फिर थोड़ी देर के बाद उस शेर के ऊपर सवारी करके मधुबन में आती हूँ, अपना अनुभव सुनाती हूँ सबको, ऐसे मुझे। तो मतलब कहने का भाव यह, बाबा कहते ना माया भी कागज का शेर है, तो देखो अगर कोई भी हमारा उल्टा संकल्प है ना, या पर कुछ भी हो, तो शेर कागज माया भी तो शेर है ना, है शेर के रूप में बैठी खा जाती है, पर है ना। तो इसी तरह से तो हमको मतलब बाबा की मतलब कहने का भाव ये है कि बाबा की याद में इतनी शक्ति है कि कोई भी हमारा बाल बांका नहीं कर सकता, माया तो हमारे पास आ नहीं सकती, दूर ही बैठी रहेगी, उस पर हमारी सवारी है ना, उस पर सवारी हमारी है, है? लेकिन माया हमारे पर वार नहीं करेगी, वो है तो उसको सवारी करनी है हमको, है ना, इतना जीत पानी है। तो बाबा सब मेरे को दिखलाता था कि देखो बच्ची ऐसे ऐसे पुरुषार्थ करना है, सपने के रूप में भी बाबा मेरे को दिखाता था ये सब। ऐसे करते करते फिर मेरे को ना, मैं कानपुर में रहती थी, मुझे ये था कि मुझे मधुबन में जाना है, लेकिन मुझे मधुबन आने का चांस नहीं मिल रहा था, तो इसने बाबा अव्यक्त हो गए। जब बाबा अव्यक्त हो गए तो फिर तो दीदी जो बड़ी दीदी थी ना, मनमोहनी दीदी, ये फोटो है ना, ये मनमोहनी दीदी का, तो ये उस समय यूपी के टूर पर थी। तो दीदी के कारण दादी का टेलीफोन पर टेलीफोन आ रहा था कि दीदी जहाँ भी हो मधुबन पहुंच जावे, बाबा ऐसे ऐसे अव्यक्त हो गए। तो हमको तो रात को ही मालूम पड़ गया था, और दीदी जहाँ थी वहां पर टेलीफोन नहीं था, दीदी इलाहाबाद में थी उस समय, और फिर बनारस फोन किया क्योंकि बनारस नजदीक पड़ता है, फिर बनारस से एक भाई गया, दीदी को खबर मिली, तो हमको तो रात को ही मालूम पड़ गया था। तो हमारे साथ जो दादी रहती थी, जिनके घर में सेंटर था माता जी, वो तो मधुबन में आ गए और मुझे वहाँ अकेला छोड़ दिया। बस मुझे तो ऐसा लगता था मेरा दुनिया में कोई अपना नहीं है, जो अपना था वही चला गया, अब मेरे दिल का हाल कौन लेगा, अब मैं कैसे जीऊंगी, अब मैं कैसे चलूंगी, मेरी कोई सुनेगा ही नहीं, अब मैं क्या करूंगी, ऐसे सोच करके ना मैं बहुत रो रही थी, बहुत रो रही थी। जैसे मैं रो रही थी ना, ऐसे बाबा मेरे सामने आके खड़ा हो गया, जैसे ये बाबा खड़ा है ना, ऐसे ही बाबा मेरे सामने आके खड़ा हो गया। बाबा कहते बच्ची तुम रो क्यों रही हो, देखो मैं तुम्हारे सामने तो खड़ा हूँ, मैं कहाँ चला गया हूँ। हाँ, जब तुम्हारी भक्ति में भी आश पूरी होती थी तो ये दिखाई थोड़ी पड़ता था, लेकिन तेरी आश तो पूरी होती थी। अब तो मैं तुम्हारे सामने हूँ। तो मैंने बाबा को बोला, मैंने कहा बाबा अब मैं कानपुर में नहीं रहूंगी, मैं मथुरा में रहूंगी। तो बाबा ने उसी साल ही मेरी आश पूरी किया। फिर जनवरी में बाबा ने शरीर छोड़ा और अप्रैल में दीदी हमारे पास आई। तो मैंने दीदी को बोला, मैंने कहा दीदी हमारी बहुत दिल है मधुबन आने के लिए, पहले भी नहीं आई हूँ, अभी बाबा के होते भी नहीं आई हूँ। तो दीदी ने फिर हमारे साथ जो बहन रहती थी ना, तो उनको बोला कि अभी इसको भेजना। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर दीदी के मुख से निकला, अगर हम इसको रख ले तो उन्होंने कहा रख लेना। देखो बाबा ने दीदी के द्वारा कहलवाया। तो ये भी देखो बंडर है ना, कि देखो सब यहाँ मधुबन में आए बाबा के होते और बाबा मेरे पास वहाँ आया। कमाल है ना, है? बाबा मेरे पास, क्यों मैं यहाँ नहीं आ सकती थी ना, है? इसलिए बाबा मेरे पास वहाँ मिलने आए। तो बाबा कहते हैं ना कि जिसकी सच्ची दिल है ना, तो बाबा उसके सामने हाजिर आए, है ना। और फिर उसके बाद मेरे को फिर दीदी, फिर मैं मई में आई थी यहाँ पर मधुबन में, मई में आई। तो मई में जब आई तो फिर मेरे को दीदी ने देहरादून भेज दिया, थोड़ा समय रह करके फिर देहरादून चली गई, क्योंकि भट्टियां चल रही थी, उनको यहाँ आना था, मेरे को वहाँ भेज दिया। फिर मेरा भट्टी का टर्न आया, तो जब मैं मेरा उसी साल में ही 69 की बात है, तो मेरा भट्टी का टर्न आया, मैं मधुबन में आई। तो फिर मेरी भट्टी पूरी हुई, फिर दीदी ने मेरे से पूछा फूला तुम्हारा क्या विचार है। तो मैंने कहा दीदी जहाँ भी हमारी उन्नति समझो, जहाँ हमारा कल्याण समझो, वहाँ हमको भेज दो। बाकी दिल से पूछते हो तो दिल तो मेरी यहाँ रहने की है, बाकी जैसे आप चाहो। हमने अपना दिल दे दिया, जो जैसे भी बड़े लोग चाहे। फिर दीदी ने मेरा हाथ पकड़ के टोली की कोठी पे ले गई, जहाँ रत्मन दादी खाती है ना खाना, है? वो पहले टोली की कोठी थी, तो वहाँ टोली देते थे। तो फिर मेरे को दीदी ने कहा तुमको ये संभालना है टोली, फिर तेरे से कोई टोली मांगने आएगा ना, तुम उसको कुछ नहीं बोलना, तुम मेरे पास आना, मैं तुमको सब बताऊंगी, किसको क्या देना है नहीं देना है। तुम नई नई हो ना, तो तुझे पता नहीं है, तो तुमको मैं सब बताऊंगी। तो मैं क्लास की टोली भी दीदी से पूछने जाना पड़ता था। तो फिर मेरे को जैसे दीदी बोलती थी वैसे मैं करती थी, जो दीदी मेरे को बोलती थी वही करती थी, उसी का दीदी की आज्ञा का पालन करती थी मैं। फिर दीदी मेरे को सब बताती थी ये देना है। और दीदी के साथ मेरा इतना गहरा कनेक्शन था कि दीदी का संकल्प मेरा संकल्प एक होता था, क्योंकि जो टोली सेंटर से आती थी ना, तो मैं उस सेंटर का नाम और इतनी टोली गिनती करके ले जाती और सैंपल ले जाती थी, एक सैंपल ले जाती थी। दीदी को जाती ये टोली इतनी और इस सेंटर से आई है, दीदी को सब मालूम, सब डिब्बे तो नहीं लेके जाएंगे ना, एक एक पीस लेके जाती थी। तो फिर दीदी जो मैं संकल्प कर जाती ये क्लास में टोली खिलानी, दीदी वही बोलती थी ये क्लास में टोली खिलानी। फिर दीदी से मैं जाके पूछती दीदी क्लास में क्या टोली खिलानी है, तो दीदी कहती ये टोली खिलानी है। तो दीदी का संकल्प मेरा संकल्प एक था। एक बार मैं यहाँ छोटे हाल में योग कर रही थी और दीदी दादी वाले कमरे में थी, ये जो दादी का कमरा है ना हाल के पास में, तो दीदी भी यहीं रहती थी, दादी भी यहीं रहती थी। तो कोई दीदी के पास मिलने वाला था, मिलने आने वाला था। तो मेरे को ना योग में बैठे बैठे कभी संकल्प नहीं आया टोली का, तो उस दिन मेरे को संकल्प आया कि दीदी के पास कोई मिलने वाला आने वाला है, तो मेरे पास तो कोई ऐसी टोली नहीं है, मैं क्या दूंगी दीदी को। फिर मेरे को आया कि पिस्ता मेरे पास कटा रखा है, उसका वड़ा बना दूंगी, वो तो 5 मिनट का काम है, मैं बना के ले जाऊंगी, जो पूरा होगा मैं जाऊंगी। और जैसे मैं संकल्प करूँ ना, वो बार बार मेरे सामने आया, पिस्ते का वड़ा बनाना, पिस्ते का वड़ा बनाना है। मैं उसको हटाऊं, फिर मेरे को इधर दीदी है, वो अपनी ब्राह्मणी को बोल रही थी कि देखो पिस्ते का वड़ा तो नहीं रखा हुआ कहीं, वो युगल अभी मिलने के लिए आ रहा है, तो देखो रखा है। तो उसने जगह नहीं रखा, उसने कहा फूला को से पूछो उसके पास रखा हो तो ले आए। तो फिर मेरे को बुलाने आई वो, तो मैं गई दीदी के पास, दीदी ने कहा तेरे पास पिस्ते का वड़ा रखा है, उधर दीदी को भी यही संकल्प, मेरे को भी यही संकल्प। तो दीदी का तेरे पास पिस्ते का वड़ा रखा है, मैंने कहा दीदी रखा तो नहीं है, कटा रखा है, मैं बना के ले आती हूँ। तो जैसे मैं दीदी से पूछ के बाहर निकली ना, ऐसे वो युगल आ गया दीदी से मिलने के लिए। तो दीदी से जब तक बात किया मैं बना के लेके आई। तो देखो बाबा ने योग में भी मेरे को जो है ना वो संकल्प दे रहा था कि तुझे बनाना, नहीं तो कभी संकल्प नहीं आया। तो ऐसे ही मतलब दीदी का संकल्प मेरा संकल्प एक था। और दीदी जब जा रही थी बॉम्बे में आंखों के ऑपरेशन के लिए जा रही थी, तो दीदी के जैसे जा रही थी ना, क्योंकि आंखों के ऑपरेशन कोई बड़ी बात नहीं है। और फिर मैंने दीदी से हाथ मिलाया, तो जैसे मैंने दीदी से हाथ मिलाया ना, तो मुझे ऐसा वाइब्रेशन आया दीदी से, अब दीदी वापस नहीं आएगी, लेकिन ये संकल्प मैंने किसी को नहीं सुनाया है? अपने अंदर मर्ज कर लिया, कहेंगे इसका दिमाग खराब हो गया, अच्छी भली दीदी जा रही है और ये इसे संकल्प कर रही है, क्योंकि बड़ों के लिए कहना भी तो ठीक नहीं है ना। तो फिर मेरे संकल्प किसी को सुनाया और सचमुच दीदी वापस नहीं आई। जब वहाँ दीदी की चेकिंग हुई तो मालूम पड़ा कि ब्रेन में ट्यूमर है और ट्यूमर के कारण ही आंखों पर इफेक्ट है। और फिर दीदी का ऑपरेशन भी हो गया, फिर दीदी कोमा में चली गई, फिर दीदी ने वहीं शरीक हो गया। तो देखो बाबा ने पहले से वो वाइब्रेशन भेजा है कि अभी दीदी वापस नहीं आएगी। और फिर दीदी की बॉडी नहीं दे रहे थे डॉक्टर लोग, फिर बड़ी मुश्किल से डॉक्टरों ने छुट्टी दिया, क्योंकि हम लोग सब यहाँ से तैयार हो गए थे जाने के लिए, बॉम्बे जाने के लिए, और यहाँ मीटिंग रखी हुई थी, उन दिनों में मीटिंग रखी हुई, सब मीटिंग वाले आ गए थे यहाँ मधुबन में, जो था कारण दीदी का और सब मीटिंग का बहाना था एक है। तो फिर मीटिंग वाले भी आए थे, सब हम लोग जाने के लिए तैयार हो गए बॉम्बे में। तो फिर उसके बाद रमेश भाई का फोन आया कि ये अभी बॉडी मिल गई है, हम यहाँ लेकर आ रहे हैं, फिर दीदी को यहाँ लेके आए। क्योंकि दीदी को ये था ना कि मैं मधुबन वालों से मिली नहीं हूँ, दीदी को बहुत था ये। और फिर उसके बाद फिर दीदी का यही संस्कार हुआ, ओम शांति भवन में लेके गए थे तैयार करके, और वहीं से शमशान में लेके गए। फिर जब दीदी का भोग लगाया ना तो मेरे सामने शशि बहन थी जो आपके ऊपर सेवाधारी है ना, तो मेरे आगे वो सेवा थी। तो फिर दीदी ने मोहिनी के तन में आया था, फिर दीदी ने उसको रोका, तुम ठहरो, फिर मेरे को बुलाया, मैं गई। तो फिर मेरे को दीदी जैसे मेरे से बात करती थी ना, दीदी ने कहा मोहिनी नहीं मिल रही, मैं तेरे से मिल रही हूँ। मेरे को दीदी ने ऐसा मेरे को बोला कि मैं तेरे से मिल रही हूँ, मोहिनी नहीं मिल रही है। फिर दीदी मेरे से मिली, तो जैसे दीदी मेरे से मिलती थी ना साकार में, ऐसी बाबा मेरे को दीदी भी मिली ऐसे। तो ऐसे करते करते फिर हम मधुबन निवासी बन गए और तब से हम मधुबन में रहते हैं। और एक भी 18 जनवरी हमारी मिस नहीं हुई मधुबन में, एक भी 18 जनवरी मिस नहीं हुई। और जब पहले ही 18 जनवरी थी ना, तो बाबा झोंपड़ी में एक बुलबुल आती थी बाबा के पास से, बुलबुल बाबा के पास झोंपड़ी में आती थी, बाबा उसको कहता बच्ची, बाबा बच्ची बच्ची करके उसको टोली खिलाता था, रोज टोली खा कर जाती थी बाबा से। तो जब 18 जनवरी सभी फुल हाल ये भरा हुआ था और वो बुलबुल आई और भोग लग रहा था, सब बाबा का 18 जनवरी का भोग लग रहा था। अब एक एक के पास जाती थी फुद्दक फुद्दक करके, एक एक के पास जाती थी, सबके पास जाती थी। और जब मिल करके फिर वो आगे बैठी, फिर दीदी ने उसको टोली दिया, लेकिन उसने टोली नहीं खाई, उसने टोली नहीं खाई। देखो उस पक्षी को भी कितना स्नेह है बाबा से, जो बाबा का भोग लगा वो उसको दिया, वो खाया, लेकिन वो टोली हमेशा खाती थी वो नहीं खाई उसने। देखो उसको भी कितना प्यार है, हा? तो हम बच्चों को कितना बाबा से प्यार होगा नहीं, हम बच्चों को भी बाबा कितना प्यार से खिलाता है, खिचड़ी खिलाता है। और दिल्ली में भी एक मेजर था, तो वो मेजर की कोठी में बाबा गए थे, क्योंकि उसका ट्रांसफर होने वाला था, और फिर उसने अपने बीवी बच्चों को अपने घर में मतलब भेज दिया, और फिर उसका ट्रांसफर रुक गया। तो जब उसका बंगला खाली था तो कहा कि अभी मेरा बंगला तो खाली है तो मैं बाबा को बुलाऊं। उसने फिर बाबा को निमंत्रण दिया यहाँ, तो फिर बाबा वहां गए। तो बीच में बाबा फिर कानपुर में आए थे, हम उस समय कानपुर में थे, तो बीच में बाबा कानपुर में आए, तो फिर बाबा ने हम कानपुर में आए, मेजर भी कानपुर में आया था। और उसके बाद ना हमारी मतलब वहां पर पिकनिक रखी थी बाबा के साथ में, बाबा के साथ पिकनिक रखी थी कन्याओं की, जितनी भी कन्या थी ना वहाँ की सभी पिकनिक रखी। लेकिन बीच बीच में दूसरे दूसरे लोग आते गए, बड़े बड़े लोग, उनको मिलाते गए बाबा से दादी है। और हमको जब क्लास का समय हुआ तो सीधी सीधी प्लेट पकड़ा दिया कि ले खाओ, हम लोग तो प्लेट का मजा ही नहीं आया कि बाबा से न बात किया न कुछ किया, और ऐसे प्लेट खाने के लिए थोड़ी हम आए है। तो हम लोग तो फीकी फीकी लगने लगा, बाबा से बात ही नहीं किया, कुछ बहले नहीं, कुछ नहीं किया, ऐसे प्लेट पकड़ा दी हमको। और क्लास के समय तो हम बाबा को रोक भी नहीं सकते हैं, सब इतने लोग बैठे हुए हैं। तो फिर हम लोगों ने कन्याओं ने सबने मीटिंग किया, अभी क्या करना चाहिए, कैसे बाबा से मिलन मनाए अभी। तो फिर बाबा से फिर मिलन मनाने के लिए हम लोग मीटिंग किया, फिर सबने कहा कि बाबा अभी क्लास से उठेंगे ना, तो क्लास वाले तो चले जाएंगे, बाबा कमरे में आएगा। तो हम बाबा के कमरे सीटिंग रूम था, फिर आगे कमरा था बाबा का, जिनके घर में था ना वो अपना सारा बंगला वो दे देते थे बाबा को, जिनके घर में सेंटर था ना। तो वो सारा सारा बंगला बाबा को दे देते, अपना कमरा, अपना रूम, सिटिंग रूम सब बाबा को दे देते थे, किचन सब दे देते हैं। तो फिर बाबा ने, बाबा अंदर आएगा, लच्छू अंदर आएगी ना, और हम लोग दरवाजा बंद कर देंगे। हम लोग सब सिटिंग रूम में बैठ गए, एक एक गेट पर खड़ी थी, बस बाबा आए और लच्छू आए, उसने गेट बंद कर दिया, बाबा हमारा है। कोई कुछ नहीं कर सकता। फिर एक एक हम लोग बाबा के पास जाते थे, तो बाबा पूछ रहे थे, बच्ची कोई आज है? मेरे से बाबा ने पूछा, बच्ची को याद है? मैंने कहा, बाबा मैंने दिल्ली नहीं देखी। क्योंकि मेरे को कहीं ले नहीं जाते थे, तो मैंने कहा, बाबा सब चले जाते थे, मेरे को ले नहीं जाते थे, तो मैंने कहा, बाबा मैंने दिल्ली नहीं देखी। बाबा ने कहा, बच्ची तुम्हारी ब्याज पूरी गंगा, लेकिन गंगे दादी से पूछ लेना पहले, वो छुट्टी देंगी तो। तो फिर बाबा ने मेरे को बोल दिया, बच्ची तुम्हारी आज पूरी करेगा। लेकिन फिर बाबा ने बीच में ये भी बोला कि गंगे दादी तो छुट्टी नहीं देने वाली थी, अब सारा काम कौन करेगा यहाँ है, क्योंकि काफी काम करना पड़ता है मेरा, और मेरा भी, मेरे बाबा मामा आते थे तो चारों तरफ से लोग आ जाते थे, खाना बहुत बनाना पड़ता था, तो मेरे को भी छुट्टी नहीं मिलती थी। मैं अपने, मेरे कपड़े कहाँ है, कोई धोबी के पास है, कोई कहाँ है, कोई कहाँ बिखरा पड़ा था मेरा सब। तो फिर मैंने कहा, बाबा वो तो मैं बाबा के पास जाती थी घड़ी घड़ी, मैंने कहा, बाबा तो दादी छुट्टी देती नहीं है, मैं क्या करूं? तो बाबा ने कहा, बच्ची तुम बोलो छुट्टी देगी। तो फिर मेरे को वो छुट्टी नहीं दे रही थी। तो फिर मैंने कहा, दादी मैं, मेरा वहाँ बालभवन में रहते थे ना, तो मैंने कहा मेरे को वहाँ सारा सामान मेरा बिखरा पड़ा, मैं सारा ठीक ठाक करके आती, मुझे जान चल बाबा के साथ ही मैं जाऊँ। कहा, तुम्हारे को बाबा के साथ क्या मजा आएगा, बाहर में जाना तेरे को ज्यादा अच्छा लगेगा। मैंने कहा, नहीं बाबा के साथ ही तो अच्छा लगेगा, बाकी पीछे क्या अच्छा लगेगा मेरे को, मुझे मेरी बुद्धि को घुमा रहे देखेंगे ये जाए ना। लेकिन मैं पक्की थी, मैंने कहा बाबा के साथ ही तो मजा है, बाकी पीछे क्या मजा आएगा हमको। फिर मैंने तैयारी करने गई, तो जैसे मैं वहाँ पहुंची तो कहा मेजर साहब आने वाले हैं, उनको सारा दिखाना, अब उसी में बिजी हो गई मैं दिखाने करने में, समय मैं तैयारी नहीं, उसी दिन हमको आना था बाबा के साथ में, तो मैं तैयारी नहीं कर पाई। फिर मैंने कहा कि मैं क्या करूँ, मेजर साहब को दिखा कर वो चले गए। फिर मेरे को बोला कि अभी तुम नहीं जाना। मैंने कहा, दादी मैं रिक्शा में बैठ गई हूँ, मेरे पास कुछ जो भी मेरे को हाथ में आया ना सामान, मैं अपना अटैची में डाल करके रख दिया। तो मैंने कहा, दादी रिक्शा आ गया मेरा, मैं रिक्शा बैठ गई हूँ, आ रही हूँ मैं। हालांकि रिक्शा मैंने बुलाया नहीं था। लेकिन मुझे ये था कि बाबा के पास मुझे जाना, बाबा के साथ ही मुझे दिल्ली जाना है, मैंने यही संकल्प किया था। और सच मुझे फिर बाबा के साथ ही मैं गई दिल्ली में। बाबा ने सभा के बीच में बोला कि बच्ची दिल्ली देखने के लिए आई। बच्ची दिल्ली देखने के लिए आई बाबा। फिर मेरे को दीदी ने पहले रजौरी गार्ड में रखा, फिर उसके बाद मुझे यहाँ मेजर की कोठी में बुलाया कि बाबा का खाना बनाना तुमको। तो फिर मेरे साथ एक बहन और थी, दादी थी, वो और मैं दोनों खाना बनाते थे बाबा का। तो बाबा के पास जाती थी, बाबा मेरे को रोज गिट्टी खिलाता था। तो बाबा कहते, बच्ची तुम वहाँ क्यों नहीं खाना बनाती थी? मैंने कहा, वहाँ बाबा दूसरी बनाने वाली थी ना, इसलिए मेरे को नहीं बोलते थे, मेरे को दूसरी जगह भेज दिया। तो बाबा ने कहा, तुम अच्छा खाना बनाती बहुत। तो बाबा को ना सूक्ष्म वाइब्रेशन बहुत आते है ना, कि कितनी शुद्ध भावना से बाबा के साथ भोजन बनाए, कितने प्यार से, इतना स्नेह से, बाबा की याद में। तो बाबा को वो वाइब्रेशन आते है ना, कोई भोजन का बाबा को थोड़ी टेस्ट है, बाबा वो वाइब्रेशन देखता है, इस बच्चे में कितना प्यार है, कितना बाबा की याद है। तो मैं तो बहुत प्यार से बाबा की याद में बनाती थी भोजन। तो बाबा बहुत, फिर उसके बाद वंडरफुल कहानी है। तो हम लोग शिव जयंती आने वाली थी, सुदेश जो जर्मन वाली, ये भी वहाँ की रजौरी की टीचर थी उस समय, तो ये भी वहीं थी। हम लोग शिव जयंती की सब तैयारियां कर रहे थे, और बाबा का मतलब हर सेंटर जो दिल्ली में सेंटर थे ना, एक एक सेंटर का एक एक दिन ब्रह्मा भोजन था बाबा के साथ में, और सब सब्जियां भी आ गई थी, सब्जियां भी सब आ गई थी। और सब तो रात को हम लोग 12 बजे सोए हैं, क्योंकि प्रोग्राम बना रहे थे ना, और बाबा भी अपने कमरे में 12 बजे गया। तो इसका ना मेजर का फोन आया वहाँ से, मिलिट्री से फोन आया, तो कुछ हुआ होगा। तो फोन आया तो उसको अपने कमरे में गया, तो उसको ना खांसी हो रही थी। तो ये रुक्मणी बा है ना रजौरी गार्डन में, तो वो वहां पर थी उसके सामने। तो कहा बाबा को बुलाओ, अभी बाबा अभी जाके सोया है, कैसे बाबा को जगाए, अभी पहली नींद होगी बाबा को। तो वो बार बार बोले बाबा को जगाओ, बाबा को जगाओ। तो किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी बाबा को जगाने के लिए, और वो बार बार बोलता जा रहा है बाबा को जगाओ बाबा को जगाओ। फिर आखिर बाबा को जगाना पड़ा। तो बाबा जैसे आए तो बाबा ने उस कमरे में गए, बाबा मेजर के कमरे में जाकर के तो देखो उस बाबा उसका सिर अपने यहाँ रखा है। तो बाबा अपनी गोदी में रखा और बाबा को बोला, बाबा मेरे गुनाह बख्शो मैं जा रहा हूँ, बाबा मेरे गुनाह बख्शो मैं जा रहा हूँ। ऐसे तीन बार बोला, बाबा मेरे गुनाह बख्शो मैं जा रहा हूँ। ऐसे बाबा को बोला ओम शांति, बाबा की गोदी में उसने शरीर छोड़ दिया। देखो कम, लेकिन उस मेजर की वंडरफुल कहानी ये है, उसने भक्ति बहुत की थी। इतनी भक्ति की थी कि हमको भी कहता था आप हमारे कमरे में आओ देखो कैसे हम भक्ति करते थे ऐसे। तो लेकिन हम जाते नहीं थे क्योंकि नया बहुत समय से ज्ञान में नहीं था, थोड़ा समय से चलता था। लेकिन हमको थोड़ी शर्म आती थी भाइयों से मिलने के लिए, तो मैं जाती नहीं था। एक दिन गुलदार दार ली गई, सभी गए ना, तो मैं भी फिर पीछे पीछे चली गई। वो बार बार मेरे को, क्योंकि बाबा का किचन जो था ना क्रॉस करके उसके कमरा था आगे, वो रोज मेरे को बोल रहा हमने दूध दिया हमने खाना खाया मैंने खा लिया। बहुत उसका सबके साथ स्नेह था, ये नहीं कि एक के साथ है दूसरे के साथ नहीं है, सबके साथ छोटा हो बड़ा सबके साथ उसका एक जैसा प्यार था सबके साथ। ये वंडरफुल है उसका, और इतना निर्माणचित बहुत निर्माणचित था। और देखो भगवान के पास नंबर लेना हो तो ऐसे नंबर लेना है, मनुष्य आत्मा के पास तो नाम अनुसार मिल जाएगा, लेकिन भगवान के साथ नंबर लेने के लिए सबके साथ स्नेह होना चाहिए। ये नहीं एक के साथ है दूसरे के साथ नहीं, दूसरे के साथ है तीसरे के साथ नहीं, किसी के साथ है किसी के साथ नहीं है। और निर्माण होकर चलिए, बाबा कहते निर्माण होकर चलो। तो इसी तरह से वो भी बहुत निर्माण की था। और देखो फिर सभी मिनिस्ट्री वाले को फोन कर दिया, सब जगह उसके घर में फोन किया, सब जगह सब आए, सब क्लास में आए। फिर सवेरे मिलिट्री वाले भी आ गए गाड़ी लेकर के आ गए। तो फिर उनको मिलिट्री वाले तो लेके गए मेजर की बॉडी को लेके गए, वो तो उनका जैसा रूल होता ना मिलिट्री वालों का, तो वो अपना लेके गए। फिर तो उसकी बॉडी को खूब उन्होंने पूरी ड्रेस पहनाई, मिलिट्री की ड्रेस पहना करके पूरे बैंड बाजों से उसको लेके गए, बहुत धूमधाम से ले गए, इतनी धूमधाम से ले गए बात मत पूछो। और जब उनके ये परिवार वाले आए तो वो तो रोने लगे, बहुत बहुत रोने लगे। तो बाबा को तो किसी का रोना अच्छा नहीं लगता, बाबा ने तो ऐसी मुरली चलाई, देखो ज्ञान बरसात भी बड़ी जोर से पड़ रही है फोर्स के साथ, और पानी की बरसात भी फुल फोर्स के साथ पड़ रही है, पंडाल गीला होता है पानी आ रहा है ना? और बाबा की मेरी ज्ञान बरसात फुल फोर्स का, बाबा ने कहा सांडिया है बंदर है बंदे, बाबा ने क्या क्या बोला होगा उसको। तो देखो बाबा अथॉरिटी, लेकिन किसी ने क्यों नहीं बोली, कौन बोल रहा है हाईएस्ट अथॉरिटी बोल रहा है, कोई किसी ने कुछ बोला नहीं तो झगड़ा हो जाए। ऐसे कोई साधारण आदमी बोले तो झगड़ा हो सकता है ना कि ये क्या है बोलने वाला है, लेकिन किसी ने क्यों नहीं किया। तो फिर तो सभी सब आए यहाँ, फिर जो सब्जियां आई थी ना सेंटरों के ब्रह्मा भोजन की, सब उसी में लग गई, कितने लोग आए चारों तरफ से सब आ गए उसी समय। तो फिर तो सब्जियां सब बनाते जाओ और खाते जाओ, चूल्हे में जब दबा जाओ तो खाते जाओ। इतना होता सब समझा। फिर तो बाबा मधुबन में आ गए, फिर बाबा मधुबन में आए, फिर मेरे को दीदी ने फिर हमको दिल्ली सारी घुमाई। 13 दिन उसका भोग लगा, हाँ गुलजार दादी ने 13 दिन भोग लगाया। तो उसका भोग में भी संदेश है, तो जैसे वो आत्मा मतलब जैसे साकार रूप में ऐसे हाथ जोड़ करके ऐसे नमस्कार सब कुछ से करता था ना, ऐसे वो कर रहा था। और 2 दिन पहले से ही वो वातावरण में फर्क पड़ गया। तो जैसे हम बाबा का खाना बना के बाहर निकले ना, तो मैंने कहा जैसे सन्नाटा सन्नाटा सा लग रहा है, पता नहीं क्यों आज जैसे सन्नाटा लग रहा है। तो फिर मैं बाबा के कमरे में गई तो देखा सभी बैठे हुए हैं, लेकिन है तो सभी, लेकिन सन्नाटा क्यों लग रहा है, ऐसे 2 दिन पहले सन्नाटा सा लग रहा था। तो फिर जब गुलजार दादी ने संदेश में सुनाया ना कि आप लोगों ने अनुभव किया होगा कि 2 दिन पहले से ही सन्नाटा सा था, तो हमने नहीं अनुभव किया लेकिन सबने अनुभव किया था, तो सन्नाटा सा हो गया, वातावरण में सन्नाटा हो गया था। और फिर दादी ने उसका मतलब जन्म भी बताया, बाबा ने जन्म उसका बताया कि एक भगत है, तो भगत भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि मुझे एक बच्चा चाहिए, तो वो माँ के गर्भ में प्रवेश हो जाता है। तो फिर उसके बाद बाबा ने बोला कि बहुत लाड प्यार से पलेगा और गोल्डन स्पून से दूध पिएगा, बहुत ही लाड प्यार से पलेगा, ये बहुत भगत जो आत्मा है वो बहुत ही प्यासी आत्मा है बच्चे की, इसलिए इसको बहुत प्यार से पालेंगे। फिर बाबा ने ये भी बताया कि अंत में मिलिट्री का राज होगा और मिलिट्री आप लोगों को बहुत हेल्प करेगी। अभी इस समय वो होगा समझो मम्मा से भी उसने पहले शरीर छोड़ा है ना, 61 में शायद शरीर छोड़ा होगा, मैं समझती 61 में शरीर छोड़ा होगा उसने मेरे घर में। अभी वो काफी बड़ा हो गया, अभी मिलिट्री का वो बड़ा होगा तो हो सकता है उस मिलिट्री वाले वो बड़ा होगा तो उसकी आड़ों पर ही सारी मिलिट्री चलेगी, क्योंकि मिलिट्री वालों ने उसका संस्कार किया ना, फिर वो मिलिट्री में आएगा तो मिलिट्री वाले ही मिलिट्री का वो बड़ा होगा सबसे बड़ा, तो उसकी आड़ों पर ही सारी मिलिट्री चलेगी। तो अंत में क्योंकि अभी तो देख रहे ना दुनिया की हालत क्या है, कोई संभाल नहीं सकेगा, तो फिर मिलिट्री वाले संभालेंगे इसको, इस राज्य को, तो मिलिट्री वालों का ही फिर हम लोगों को बहुत हेल्प करेगी लास्ट में, ये बाबा ने बताया। तो देखो किस किस का क्या पार्ट है, अभी भी उसका पार्ट है, उसका बहुत बड़ा पार्ट है, अभी भी साधारण पार्ट नहीं है उसका, तो कोई किसी का किया हुआ जाता नहीं, भगवान उसका फल देता है उसको, है ना। तो इसी तरह से अगर देखो जैसे ही करने किया है उसने उसका फल उसको मिल रहा है ना, हम भी ऐसे करने करेंगे तो हमको भी ऐसा मिलेगा। और देखो तीनों टाइम बाबा के साथ खाना खाता, नाश्ता भी खाना भी सब तीनों के साथ, तीनों समय बाबा के साथ खाता था, तो कोई कम बात थोड़ी है, है? बाबा के साथ रहना, बाबा के साथ खाना, बाबा के साथ चलना है। फिर मैं हाँ बाबा बीच में ना जाने लगा था तो मेरे पास बाबा ने कहा अभी मेरी यहाँ कोई सेवा नहीं है, बाबा को नहीं बाबा बहुत सेवा है, और वो रोज 100-100 लोगों को ले आता था बाबा के पास मिलिट्री वालों को, तो बाबा मिलिट्री वालों को समझाता था, बाबा कहता था देखो बच्चे आपका ड्यूटी है ना दुश्मन पर गोली चलाना, लेकिन गोली चलाते समय ना शिव बाबा को याद करके चलाना, तो एक तो आपका निशाना ठीक पड़ेगा और दूसरा उसकी याद में करेंगे तो आप तो कोई भी विकर्म का खाता नहीं, आपका पाप नहीं बनेगा उसमें है? तो क्योंकि दुश्मन को मारना ही ठीक है तो इसलिए, लेकिन उसकी याद में करना, परमात्मा की याद में करना, शिव बाबा की याद में करना, तो वो गोली आपकी ठीक निशाने पर पड़ेगी और दूसरा आपका कोई पाप का खाता नहीं बनेगा, ऐसे से बाबा उनको समझाता था मिलिट्री वालों को। कर्नल आते थे, मेजर आते थे, उनके जो अंडर में सब थे बहुत आते थे, देखो अंत में वो बहुत सेवा कर गया, बहुत सेवा कर गया, डायरेक्ट बाबा ने उनको ज्ञान दिया ना, डायरेक्ट बाबा। हम लोगों को तो दादियां देंगी, बहने देंगी, दूसरे देंगे, तीसरे देंगे, सब देंगे ना, लेकिन उनको तो डायरेक्ट भगवान ने डायरेक्ट उनको ज्ञान दिया, तो ये भी कोई कम बात नहीं है। तो इसलिए हम भी ऐसा करें जो कुछ काम ऐसा करके जाए जो बाबा हमको आगे बढ़ाए, हम आगे रहे। तो देखो इसी तरह से बाबा जो है ना जो मतलब पाठ दिखाया उसका, लेकिन हरे की आत्मा ये कहती थी हम भी मरे तो ऐसे मरे, हम भी बाबा की गोदी मरे, लेकिन हरे का पाठ तो नहीं है ना एक जैसा है, जो उसका पाठ होगा हमारा थोड़ी होगा, नहीं होगा है? तो देखो हरे के अंदर में ये बाबा की याद दिल में समाई हुई थी, ओम शांति, 10 से ऊपर हो गया।